न समझा जाए और इसको न समझा जाए कि आज यहाँ के जयपुर के कारीगरों ने या वहाँ के कारीगरों ने इनको अपने हाथ से लड़ा और औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तोड़ दिया। इसके संबंध में हमने बहुत कुछ बताया है। ठाकुर जी को चलते फिरते हैं, बातचीत करते हैं, भक्तों से बात करते हैं, उनको खाने की जरूरत होगी तो वो बतला देंगे, भूख लगेगी तो बतला देंगे, जैसे बच्चे बतलाते हैं। साधारण से ये गोविंद जी गोपीनाथ मदन मन ये बच्चे जैसे हैं, अपनी सेवा देने के लिए बोलते नहीं है, नहीं तो भक्तों से तो बोलते हैं जो उनका स्वरूप जानते हैं, नहीं तो यदि वो बातचीत करने लगे तो कोई उनकी सेवा नहीं करेगा। इसलिए अचल मूर्ति के रूप में वो है। हमने सुना है कि जिस समय ठाकुर जी की प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई, यहाँ का रानी ने सोचा हमारे नाम का बेहतर बहुत कीमती है, उसमें हीरे जवाहरात गए हुए हैं, मैं ठाकुर जी को पहनाऊंगी। किंतु सोचा पहनाने वैसे नाम से कुछ खेल होंगे नहीं और ये तो संभव पर नहीं आया। बड़ी चिंतित हो गई और झपकी लग गई। सवेरे उन्होंने देखा गोविंद जी उनके पास में आए, बोले अरे मेरे नाम से मेरी मैया यशोदा जी ने खेल कर रखा है, तुम पहनाना चाहती है तो आकर के पहना लो। सवेरे आई और देखी के सचमुच में उनके नाम में खेल है। फिर उन्होंने उस वेशर को स्वर्णकालों से निर्मल फिर बनाकर और अपने हाथों से उनको पहना दिया। आप लोग जानते होंगे सनातन गोस्वामी जी भिक्षा करने रोज जाते थे, रोज प्रतिदिन गोवर्धन से वृंदावन से जाते, चौदह मील गोवर्धन में जाते और चौदह मील की परिक्रमा करके फिर चौदह मील चल करके मथुरा में माधुरी करते, माधुरी करके तब फिर वृंदावन में पहुंचते, फिर सवेरे चले जाते। उनका प्रतिदिन का ये नियम था। वहां पर वृंदावन में थी, मथुरा में माधुरी करने गए थे, चौबाई के घर में देखा दो लड़के परस्पर लड़ रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं और एक श्यामरण का लड़का और एक गौरवर्ण का लड़का उस चौबाई का लड़का। वो लड़के के साथ में उसके लड़के के साथ में गिल्ली डंडा खेलते, कृष्ण ने उनको जब जीत गया तो उसके कंधे पर चढ़े और जब कृष्ण हार गए तो जीत गया तो जल्दी से भक्त के मंदिर में घुस गए और वो डंडा पे करके कहा जाता तू भाकर के रहते कि कहाँ चल गया है। वो मंदिर में घुसने लगा उनको पकड़ने के लिए, ये तो अब तुम्हारे कमरे पर चढ़ूंगा, तो वो भीतर भी चले गए। ठाकुर जी और मूर्ति बन करके खड़े हो गए, पुजारी ने यहाँ खबर डालना था उनको झटका क्या कर तुम चलाएगा ना तो हम देखेंगे। दूसरे दिन दोनों बच्चे रो रहे थे खाने के लिए और मैया क्या कर रही अभी अभी नींद से उठी और कपड़े नहीं कर रहे हैं, दातन कर रही थी और खिचड़ी चढ़ा दिया और खिचड़ी जब पकने लगी तो दातन से इधर से तो दातन करती है और खिचड़ी से उसको चलाने लगी और उस समय में सनातन गोस्वामी पहुंचे और उन दोनों बच्चों को इससे बातचीत की फिर उतार करके बच्चों को परस किया सब स्नान करने धोने के लिए चली। जब आई तो उन्होंने कहा कि देखो ये तुम्हारे लड़के और ये वो साधारण नहीं है और तुम उनको जूठा इसके घर से दातुन का रक्त निकलता है तुम्हारे जूठा और उसे पीछे चलाती है और उससे तुम उनको खिला दिया कि तुम्हारे लिए बहुत पाप लगेगा। अच्छा रे बाबा तुमने अच्छा किया हमको समझा दिया, नहीं तो मैं रोटी ऐसा करती थी। अच्छा दूसरे दिन वो जमुना स्नान करने चली गई और बच्चे दोनों रो रहे, मैया भूख लगी है मैया भूख लगी, गोपाल को भी भूख लग गई, मदन गोपाल को तो उसके बच्चे को भी रोने लगे। सनातन गोस्वामी ने देखा कि तो हमारे पशु भी रो रहे हैं, उसका बच्चा भी रो रहा है। ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। जब आई भैया ऐसा मत करो, तुम जैसे करते थे पहले वैसे ही करो। यदि किसी ने झूठा खाने में ही वो आनंद है तो कोई कहने की बात नहीं है। तुम ऐसे प्रेम के रूप से वो कहें भगवान। सनातन गोस्वामी जब दूसरे दिन आए तो मदन गोपाल जी ने कहा, मैं तेरे साथ ही चलूंगा वृंदावन में रहूंगा और मुझे कक्षा यहां नहीं रखा, मैं वृंदावन में रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कैसे आपको ले जाऊं, मैं नहीं ले जा सकता। जो सदा मैया के नौ आके जाए उसे तुम्हारा पेट नहीं भरा, कृष्ण के घरों में तुम मक्खन चोरी करता था। फिर तुम दूध पीने के लिए यशोदा जी का दूध जो तुम्हारे लिए पूरा नहीं पड़ा तो तुम एक वर्ष तक गये के बचड़े बाप को बचड़े होकर के दूध किया तो भी पेट नहीं भरा। तो लाखों कोई गोपियों के तुम बेटे बने और एक वर्ष तक छत्ता से तुम ले किया और यशोदा मैया और ये सब लोग मिल करके तुम्हारा भोग को बंद नहीं कर सके, पेट नहीं भर सके, तो मैं कैसे भर सकूंगा। मेरे लिए संभव तो माधुरी का है, उसकी रोटी का भी बड़ा दूध बिना नमस्कार लेते हैं तो कैसे खाएगा। पर बाबा मैं देख लूंगा, मैं खा लूंगा, तुम इसके लिए चिंता मत करो, तुम हमको ले चलो। अगर मैं कैसे ले चलूँ तो चलो पीछे पीछे, तो मैं कैसे मूर्ति कैसे पत्थर पीछे ले ली। कभी पत्थर की मूर्ति कभी बात करती है जैसे चलेगा नहीं और तुम चलो। तो मुस्कुरा दिए बोले जाता तो चलो मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो तुम आएगा कि नहीं, ग्वालिया तो है, वो आएगा कि नहीं कोई ठीक नहीं, नहीं हमारे चार कानून को बजेदार सुन करके चलो। चलते 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 जब कि वृंदावन में कौन थे
मदन थे,
मदन थे में पहुंचे यमुना के किनारे। उन्होंने पीछे मूल तक देखा तो ठाकुर जी मुस्कुरा करके वहीं पर खड़े और उस पत्थर की मूर्ति बन गए। वहीं पर उनको स्थापन किया। ठाकुर जी का भी सारी व्यवस्था था, इसकी बहुत लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाएंगे, हम अपना आरंभ करेंगे। तो ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा मत कर सुन देना जो ठाकुर जी बोलते नहीं है, चलते नहीं है, सोचते नहीं है, बोलते हैं कि तुम बोलेंगे किससे। ऐसा ही भक्तों भक्तों के यहां की भूख लगती है, यशोदा मैया के घर में उनको भूख लग गई। अपूर उद्धव इन लोगों के घर में भूख नहीं लगेगी, दुर्योधन के घर में इनको भूख नहीं लगती और भक्तों की आंख की आंख चपटी करके खाते हैं, चोरी करके खाते हैं। कई ऐसे ही ठाकुर हैं, बड़े रंगीले हैं। यहाँ के गोस्वामी जी जो सेवाएं हैं वो कम कर रहे थे, उनसे हमारी बातों को सबको उन्होंने प्रवचन को सुना, बड़ी प्रसन्न हुए। कह रहे थे ये इनके पिताजी जब प्रद्युम्न गोस्वामी थे तो कुछ लोगों ने आकर उनसे कहा, देखो विश्व में सबसे धनी मंदिर है वेंकटेश जी का मंदिर दक्षिण में, लाखों रुपये का करोड़ों रुपयों का चढ़ावा तो हो जाता है और उससे सामाजिक कार्य होता है। ठाकुर जी के काम में क्या होता है मैं नहीं जानता, किंतु सामाजिक कार्य होता है, इसको चलते हैं और जिसमें नाश्ते भी पैदा होते हैं और भी सब काम होते हैं, बड़े बड़े और प्रभाव है चिकित्सालय भी हो रहे हैं। तो किसी ने उनसे कहा कि महाराज आप ऐसे चीजें गुस्सा चार पांच तरह के श्रेणी के भक्तों पर रखिए, जो भक्त 5,000 रुपया ले उसको भीतर में इस घेरे के अंदर भी ले लें और जो 2,500 रुपया देगा उसको थोड़ा सा निकट में दर्शन देने के लिए व्यवस्था करते और 1,000 वाले को उससे थोड़ी सी कम देंगे और साधारण लोगों के लिए जरा दूर से व्यवस्था कर देंगे, दूर से लाइन लगा कर देंगे और इसमें आपकी आमदनी करोड़ों रुपये बढ़ जाएगी। उन्होंने उत्तर दिया, मेरे जीवित रहते हुए ये व्यवस्था मैं नहीं लागू कर सकता। क्यों नहीं लागू कर सकता, ये तो है पारिया। देखो ना कैसे वृंदावन से यहां सब चले आए, उनको जहां पर प्यार मिलता है वहां पर रहते हैं। ग्वालियर को प्यार के लिए, राजकोट के लिए तो वो द्वारका में है, द्वारका में राज हो सकते हैं, पिता का अयोध्या में राज हो सकते हैं, किंतु वृंदावन के लिए जो ग्वालियां हैं इनको प्रेम के लिए यदि मैं ऐसी व्यवस्था करूं तो मैंने कहा यहां से फिर निकल करके दूसरी जगह चले जाएंगे और वो यहां नहीं रहेंगे। देखो जब वृंदावन से चले आए नहीं रहेंगे, बात ठीक है। जहां धन प्रधान होता है अनर्थ होते हैं, गोस्वामी जी पालन के शांति भक्त थे, भक्तों का ऐसा ही विचार। ठाकुर जी को लाज लगाना चाहिए, यदि लाज नहीं करेंगे तो नहीं रह सकते हैं, वो प्रेम के दूसरे हैं। इनको पत्थर काटना मत समझिए, मैंने ये बदला या कुछ संकेत में बदलाया। बहुत से लोग कहते हैं कि इनका कोई आकार ही नहीं है भगवान का, उनका नाम तो है आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। जब आते हैं तो अपना मनुष्य का ये रूप बना लेते हैं, ये गलत बात है। ये गोविंद जो रूप है यही मूल रूप है, कहने का रूप ही है। और ग्वालिया का रूप गुरु वृंदावन में वही, वहां पर भी यही रूप जब करते हैं तो इसलिए उनको अवकाश भरा जाता है। बहुत से नास्तिक लोग आज भारतवर्ष में धर्म के नाम पर बहुत ही गंदी बातों को चलाते हैं। भगवान निराकार है, बड़े अपने को सब बताते हैं, अरे निराकार में ही तो आकार है, आकार में जाकर तो निराकार कैसे बना देते। निर्गुण निर्गुण मैंने गुण ही नहीं है, और एक शब्द गुण न रहे तो ये निर्गुण बनाएगा कहां से। नीच से कोई शब्द नहीं होगा, गुण होना चाहिए। भगवान का रूप है सब आप कह सकते हैं, और गुण और किस लिए भारतीय स्वरूप नहीं है। अप्राकृत गुण का परिवार है, ये गोविंद जी का रूप अप्राकृत है, देख नहीं सकते तो भी लोग माया के बच्चे हम इसको देख रहे हैं। बहुत तरह की डिजाइने करते हैं ये, इसलिए भगवान का रूप है। यदि भगवान का रूप नहीं है तो ये सारा रूप कहां से आ गया, कहां से आया। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया पूर्णम भगत पूर्णम इदम पूर्णा पूर्णम विद्यते पूर्णम से पूर्णम आधार पूर्णम एव वसति। भगवान अनंत है, पूर्ण है, पूर्ण माने अनंत है, पूर्ण है अनंत माइनस अनंत केवल जो अनंत एक चित्र को समझिए। अनंत में से एक कोई भी संख्या ले लीजिए, अनंत भी लीजिए तो अनंत ही बच रहेगा, पूर्ण में से पूर्ण ले लीजिए तब भी पूर्ण रहेगा। ये भगवान परिपूर्ण है, इनके लिए सब निकल करके भी वो पूर्ण ही रहते हैं, उनसे जो अवतार निकलते हैं वो पूर्ण है। जीरो माइनस जीरो भी जीरो होता है किंतु वो पूर्ण नहीं है। ये जगत शून्य से नहीं आया, किसी को कहते हैं बौद्ध भिन्न हमारे भारत सबसे पैदा हुआ किंतु उसका विचार ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि हम लोग अभी भी शून्य है, जगत शून्य है और फिर जगत शून्य में लय जाएगा। और भगवान ब्रह्मा परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वेद भी नहीं है, वेद अमान्य है। ये केवल मात्र और तपो संघ की भांति ये वेद है, वेद की मानने की कोई जरूरत नहीं है, पूछा है ब्राह्मणों का बल है चंद्र ये बात होती है। इसलिए भारतवर्ष से उस धर्म को विकारित कर दिया गया, भारतवर्ष में नहीं जीता और फिर वही संसार में छा रहा है। भारतवर्ष में के भी लोग भी उसको ग्रहण कर रहे हैं, हमारे यहाँ से बुद्धि के लिए और राष्ट्र के अभिनायक लोग इस बौद्ध धर्म को फिर से ले रहे हैं, शून्य से जगह इनको वेदों का शास्त्रों का भागवत का ये विचार नहीं है। ये कृष्ण का रूप है, कृष्ण के परिवार हैं, यशोदा मैया नंद बाबा यशोदा जी इत्यादि परिकर हैं, जगत उन्हीं से निकला, जगत असत्य नहीं है, सत्य है, किंतु इसके अंदर में जो आत्मा है वही परम और वैधानिक इस चीज को समझ। ये जिसके जिसके कहने में हम कहना गोविंद चाली का लीला, उनका रूप, उनका नाम सब इन्हीं के जगत की सृष्टि हुए है, इन्हीं के सारे अवतार भी करते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से समझें। अब मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। कृष्ण को प्रकट हुए, अब प्रकट हुए करीब करीब 130 वर्ष करीब हो गए। कभी काल उनके जाने के बाद ही मैं प्रवेश कर दिया है। जब प्रवेश कर दिया उस समय में उसके बाद में महाराज परीक्षित को सांप काटने वाला था। उस समय में सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको साथ दी कृष्ण के लीला के चरित्रों को वर्णन किया। इसलिए व्यास जी ने जो भागवत निधि को प्रकाश किया जो नीति है केवल अक्षरात्मक रूप में उसको प्रकाश किया। भागवत पहले नहीं था और उससे पहले कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, ऐसा मत समझो। अनंत काल से कृष्ण की लीलाएं हैं, कभी कभी वो जगत में उतरते हैं, किंतु है कि सृष्टि से पहले से ही गुरु वृंदावन में ही ये लीला है। तो कृष्णचंद्र जी के जाने के बाद में परीक्षित महाराज को अपनी संपात कुछ उन्होंने अन्याय किया, उन्होंने खुद अन्याय नहीं किया, भगवान को श्रीमद् भागवत को प्रकाश करना था, इसलिए उनके अंतर में प्रेरणा देकर के वैष्णव के प्रति संतों के प्रति कुछ निरादर करा। उनके बेटे ने अभी चंपा किया, सातवें दिन तुम्हें तक्षक काटेगा और तुमको कोई भी जीवित नहीं करा सकेगा, कोई भी नहीं कर सकता। बात जब परीक्षित महारानी को मालूम हुई तो वो रानी को छोड़ दी, गंगा के किनारे आए, खाना पीना सब कुछ छोड़ करके चिंतन कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसी समय में सुखदेव गोस्वामी वहां पर पधारे, उनको प्रणाम करके उनको आशीर्वाद दिया और नाक से देकर कभी हमें अंतरिक्ष प्रसुद्ध संप्रदाय प्रतिष्ठ गौतम जितने हमारे भारतवर्ष में ऋषि महर्षि जो थे, ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मज्ञान अनुभूति करने वाले परम भक्त थे, न जाने कैसे उनको मालूम हो गया। उस समय तो ये टेलीफोन और ये सब कुछ भी नहीं था, रेडार इत्यादि कुछ भी नहीं था, कैसे मालूम हो गया शब्द की उन्नत समय। कहते थे कि तुम मर जाओ तो मर जाएगा, मरने के बाद में ये जीवित हो जाओ तो जीवित हो जाता था, तुम वृक्ष हो जाओ तो वृक्ष हो जाता था। इस प्रकार से अपने सबक आराधना से उन्होंने शब्द को एकदम ऐसा जीत दिया था, जो कहते वही हो जाता। परीक्षित महाराज ने चिंता की और जितने भारत वर्ष में नहीं कश्यप ऋषि कहा जाते हैं, कश्यप सागर नाम सुना है, ऐसे मंगोलिया भी हमारे मंगोल हुई थी, हमारे ऋषि को संसार में भारतवर्ष संकुचित आज जाने के लिए बैठते बांधते बैठते और भारतवर्ष रह गया कितना और थोड़ा सा। हमारे देखते देखते अफगानिस्तान, बेलिस्तान, बर्मा और दूसरे सब लंका अभी तो हमारे सामने भी अभी और अभी लगने कितने बन गए। भारतवर्ष एक मट्टी देनी है जिसको समझो, संस्कृति है जिसका मैं अभी बतला रहा हूं, भारतवर्ष एक संस्कृति है, भारतवर्ष एक विचार है, दार्शनिक तत्व है, भगवत तत्व के अंतर्गत पड़ता है। इसलिए जो भारतवर्ष में रह करके भारत का यह गौरव नहीं समझते वो भारतवासी नहीं है, वो आज नहीं है। जो भगवान की मूर्ति नहीं मानते हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते, जो संसार में नहीं चलते, वो भागपाती नहीं। मूल चीज है भगवान को मानो, वेद शास्त्र के आदेश को मानो, तुम जीवन में सुखी हो सकते हो, शांति तुमको मिल सकती है, अन्यथा कोटि कोटि जन्मों में शांति और सुख नहीं हो सकता। आत्मा हम है, अजानवर है, हम बुरे होंगे किंतु आत्मा बुरी नहीं होगी। इस संसार से कमाया हुआ एक पैसा के दम ही थी, साथ में ले जाना है, नहीं ले जाना है, याद रखो। अभी ऊपर का पर्दा कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई पुत्र, कोई कुछ बना है। वास्तव में हम भगवान के नित्य भाग हैं, भगवान को भूल करके जगत में आए, इस चीज को समझो। आज लड़की है वो कल लड़का होगा लड़की होगा, ये तो हम देख रहे हैं ना। बुरा जन्म होना होगा, सारा विश्व के डॉक्टर ले जाए तो भी बुरा होना होगा। आत्मा अजर है और उसमें परमात्मा सबके नियमता है, वही ये जो जिंदगी है। तो उस समय में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी को बीच में बैठाया और पूछा, जो आज मरने वाले हैं अभी मरने के लिए तैयार है, एक दो दिन में बिस्तर पर पड़े, और जो आज न कल न परसों न बरसों मरेंगे जरूर, ये जगत का नियम है, उन लोगों के लिए क्या। उन्होंने कहा यदि अभी मरना है तो भगवान का नाम सुना दो, तुलसी जल और गंगा जल ले दो उसमें, और उसको राम नाम कृष्ण नाम किसी तरह से सुना दो, बस उनकी गति हो जाएगी, वो सुख और शांति से रहेगा। आजकल ये भी कहें नहीं है, जहां कोई बीमार हुआ अस्पताल में ले लो, कॉपी ले लेकर के ठीक ठाक करेंगे, इधर उधर नदी चारों तरफ में दे देंगे, गंगा जल भी नहीं दे सकते, घर वालों को मिल रहे नहीं देंगे, और क्या होगा, उसी तरह से डकरता डकरता हुआ कौमा में मर जाएगा, क्या उसकी गति होगी। पहले जो हमारे घरों में लोग जो मरते थे आसानी से मर जाते थे, भगवान कीर्तन करते हुए तुलसी का दल दिया जाता, आजकल ये संभव बात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा जो ठीक है तुम हम सुनो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, और जो आज न कहू तुम भगवान का नाम करो, और 7 दिन का तुम्हारा समय है, 7 दिन भागो, बस इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, संसार से पार हो जाएगा, और इस जगत से कृष्ण का परिकर बन करके तुम गुरु वृंदावन में की स्थिति से बात करें गारंटी दे। और उनको 7 दिन तक भागवत होता है, यह अपने भागवत का पहला शुक्र। उस समय में जितने भागवत के ऋषि लोग थे एकत्र हुए नैनीताल में, उसके बाद में उसके 44 या कितना मुझको समय याद नहीं है, उसके बाद में 30 वर्ष के बाद नहीं नैनीताल में नहीं हमारे सारे ऋषि लोग उपस्थित। उस समय में उपस्थित होने पर दिखा कि कलयुग आ गया, घोर कलयुग आने वाला है, आते 5,000 वर्ष का, अब तो 5,000 या कितना वर्ष बीत चुका, अब देखो जो जो हमने 50-60-70 वर्ष जो जिस जगत को देखा था आज वो जगत नहीं है। लोग अपने माता पिता का आदर करते थे, पत्नी को यथार्थ सम्मान देते थे, घर में तीनों बार रखा, स्त्रियां पति प्रसन्न होती थी, आजकल सब कुछ उलट गया, कहा नहीं जा सकता इन चीजों को, सतता नाम की कोई चीज नहीं रही, तीर्थों में तीर्थत्व नहीं रहा, क्योंकि उसमें नास्तिक लोग जो डकैत इत्यादि का बर्बाद करने लगे, यहां देखो पढ़ने भी पैसे के लिए अपने यजमानों को भी हत्या कर देते हैं, कथाओं का सार नहीं रह गया, क्यों, जहां प्रस्थापन की कथा होती है वो पैसे से लेकर जाता है, 7 दिन धावन पड़ाव कराना है तुम्हारा, 10 लाख रुपये रक्त चलेंगे, ये क्या वहां को देखना, पैसे प्रकार साफ कर रहे हैं, उस कथा का कोई महत्व नहीं, वो फल नहीं मिलेगा। श्रोता भी ऐसे हो गए, कप्तान भी हो गए, जब भक्ति की भाषा हो गई, रास्ता हो गई, तो भागवत रहना काम को विचार को मान ही जाता है और अच्छी बातों को कह नहीं करने के रूपये के लोग से वो जनता को लोभ देने के लिए, उनको मनोरंजन करने के लिए टुकड़ी टुकड़ी घर की बातें लाएंगे, भागवत की एक बात भी नहीं कहेंगे। त्रिपुर साकार कैसे चला गया, नास्तिक लोग आप वहां पर करते और सबको ठगने लगे, उसका विचार इसी तरह से सब चीजों का आधार कलयुग में उड़ गया। केवल एक ही कलयुग में चीज है, वो क्या है, कलयुग केवल नाम आधार। नाम अभी तक है, इसको जो लोग कहते हैं वो भी कहते हैं वृंदावन मथुरा के इलाके में, अयोध्या के इलाके में, गंगा यमुना के किनारे पर ये गुप्त वृंदावन में ऐसे, और सब जगह जाएंगे ये सब कथाएं मिलेंगी। कोई साधु संत जाएगा, वो दबो संत लोग जाएंगे, कहेंगे कि हमको इतना लाख रुपया दो तो वहां पर भाग ऐसे लोग जाएंगे, और वो जाएंगे वो भी त्रिपुंड धारण करके दुर्गा काली की पूजा करने वाले मूर्ति की पूजा नहीं करने, वो भाग उसमें बैठेंगे तो कथम करता कहां से मिलेगा। इसलिए आप लोग तो भगवान जयपुर में है या यहां से भी है, यहां रहते हैं या वहां से आए हैं दर्शन करने के गोविंद जी, अच्छे से संत लोग यहाँ पर समय समय पर पधारते हैं, किंतु सच्चे संतों का पधारना बड़ा भारी कठिन है। तो उस समय में वो लोग कलयुग संध्या से आए और आपके उन्होंने यही प्रश्न पूछा, ये कलयुग घोर अब आने वाला है, अभी भी ये कथा है पीछे न जाने क्या हो, इसलिए हमारा कल्याण कैसे होगा ये बदलाइए। तब वहां पर भी श्रीमद भागवत की कथा उस गोस्वामी ने इस तरह से तो वो कह रहे हैं प्रायण अल्प आयु सह सब समावस्थी हुए जना मंदा सुमंद मत मंद भागा की उपास्थित। आजकल कलयुग में और तैयारी कर गई, हमने सब कुछ सुना की लाखों वर्ष की आयु होगी, महाराज हर भी आधी उम्र में उन्होंने राज्य को अर्थात बार को बलवत कर दिया था, आयु माने 50,000 वर्ष की आयु में युवा अवस्था थे, तो बताओ उनकी पूरी कितनी अवस्था प्रमुख रखे प्रदूषण नहीं था, शांतिपूर्वक रहते थे, भगवत चिंतन करते थे, इसलिए आयु कम नहीं होती थी, द्वापर में बहुत कम हो गई, त्रेता में और कम हो गई, कलयुग में 100 वर्ष की आयु आई और उसमें भी कितना प्रॉब्लम, कितनी चिंताएं और उसका आयु हो गई, संयम नहीं अपने जीवन में, सबने जो कुछ सामने आ गया वही खाओ, भगवान ने सब कुछ खाने के लिए बनाए, जो आकाश में उड़ने वालों में पतंग मत खाओ, वो तो पतंग तो खाया नहीं जाएगा और एरोप्लेन में खाया जाएगा, बाकी सब खाने के, और पृथ्वी पर जो टीके हैं बस चौपाई को छोड़कर किसान होते हैं, बाकी सब मानव खाने के लिए ही बना मछली से लेकर के यहां तक तो मनुष्य के लड़के को भी काटकर आजकल रोटी बनती है। ये कलयुग है, इस तरह से कलावती ले जाना मंदा बड़ी मंद अवश्य खाने को होती है, अवश्य अधिकार सदैव करके भगवत चिंता नहीं करेंगे, बल्कि रात में 12-1 बजे तक सोएंगे 7 जैसा और दिन में 10 बजे तक सोएंगे 11 बजे, और उनसे ही अखबार चाहिए और टी चाहिए, भगवत चिंतन सुमेरनी माला ये सब की जरूरत नहीं, भगवत चिंतन नहीं तो उनका कल्याण कैसे होगा। और मंद मतयो मंद भाग्य, परिश्रम करने पर नहीं मंद भाग्य करते हैं अकेले हो जाता है, व्यापार करते हैं तो व्यापारी लोग कहते हैं आजकल ऐसी मंदी संसार भर में पड़ रही है कि सभी चिंतित है कि हमारा व्यवसाय कैसे टिकेगा। दिन रात इसी की चिंता, तो मतलब भाग गया और सब समय उपद्रव, रोग उपद्रव है। आजकल देखिए छोटे से बच्चे को ब्लड प्रेशर देखिएगा, पहले लोग जानते नहीं थे। एड्स नाम का सुनते हैं कोई रोग क्या है? पहले पता नहीं चले आए दो वर्षों से एड्स ना जाने क्या है बीमारी हो गई। बीमारी बीमारी चालू रखते हैं और अस्पताल इतने भी खुल रहे हैं जो शायद प्रत्येक घर ही अस्पताल बना देंगे और सभी मरीजों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। अरे आत्मसंयम नहीं है, बयान वैसा नहीं है। वो जो पहले लेकर पूरा किए सब होते थे प्राणायाम इत्यादि नहीं है, भगवत कीर्तन नहीं है, तो यही तो होगा पूरी कर्मानंद करने के लिए बहुत क्या करें क्या करें दिन रात। अतारो जगतारम समुद्र के मन से आदमी ना सत प्रधान देना आत्मा प्रसन्न। इसलिए प्रभु कृपा करके ये बतलाइए कि